नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान योजना को वर्ष 2026-27 से वर्ष 2035-36 तक 10 वर्ष के लिए लागू करने की मंजूरी दी। इस पर 28,840 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय आएगा। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में आर्थिक विकास, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा लोगों को किफायती हवाई यात्रा सुगम होगी।
उड़ान 2.0, इसमें 100 न्यू एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा। 100 न्यू एयरपोर्ट्स को चैलेंज मोड में डेवलप किया जाएगा। राज्य सरकारों को ये चैलेंज दिया जाएगा कि आप लोग प्रायोरिटी डिसाइड करो कहाँ पे एयरपोर्ट बनाना है, और लैंड से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड, कहीं पर भी कोई भी इश्यू आता है वो सब आप प्रायोरिटी बेसिस पे क्लियर करो, उस एयरपोर्ट को लिया जाएगा इस प्रोजेक्ट।
मंत्रिमंडल ने आव्रजन, वीजा, विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग योजना को 31 मार्च 2026 से और 5 वर्ष की अवधि के लिए 2031 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी है। इस पर 1800 करोड़ रुपए बजट परिव्यय आएगा। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारत में आव्रजन, वीजा जारी करने और विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित कार्यों को आपस में जोड़ना और उन्हें सुव्यवस्थित। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में 26 करोड़ टन कच्चे तेल के शोधन की क्षमता है। पश्चिम एशिया घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
हमारे पास लगभग सालाना 26 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करने की कैपेसिटी उपलब्ध है। मैं बताना चाहती हूँ कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अतः मेरा आप सभी से आग्रह है, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें।
संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार पीएनजी विस्तार पर ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों में पीएनजी कनेक्शन संबंधी आवेदन शुल्क और स्वीकृत समय सीमा को व्यवस्थित करने के लिए कल गजट अधिसूचना जारी की गई। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 50 भारतीय नाविकों को स्वदेश लाया गया है और किसी भी भारतीय जहाज या नाविक से जुड़ी घटना की कोई खबर नहीं है। पश्चिम एशिया मुद्दे पर सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक संसद भवन परिसर में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सहित अन्य नेता उपस्थित हैं। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक, सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास और समाजवादी सांसद धर्मेंद्र यादव सहित विपक्षी दलों के नेता भी बैठक में उपस्थित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के युद्ध मामलों के उप मंत्री एलब्रिज कोलबी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य पर विचारों का आदान प्रदान किया। संस्कृति मंत्रालय ने YouTube के साथ आज समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। इसका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके दुनिया भर में भारत की समृद्ध और विविध संगीत परंपरा का प्रसार करना है। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने और वैश्विक स्तर पर पारंपरिक लोक और जनजातीय संगीत को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। ये विधेयक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने का प्रावधान करता है। सदन ने सरकार के प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दे दी। छत्तीसगढ़ में आज शीर्ष माओवादी पापा राव समेत कुल 18 माओवादियों ने समर्पण कर दिया। समर्पण करने वालों में 7 महिलाएं शामिल हैं। पापा राव पर 25 लाख रुपए का इनाम था। बैंकॉक में भारतीय तीरंदाजों ने एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता के पहले चरण में आज 2 कांस्य पदक जीते। महिला रिकर्व में रूमा, कीर्ति और रिद्धि की तिकड़ी ने और पुरुष कंपाउंड वर्ग में रजत चौहान, ऋषभ यादव और उदय कंबोज ने कांस्य पदक जीते। पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल आज से छत्तीसगढ़ में शुरू हो रहे हैं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया इसका शुभारंभ करेंगे। इसमें 30,000 से अधिक जनजातीय खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।